देखिए अल वहाब को हदीस की रोशनी में। सूरत यूनुस की आयत है 26, लिल्लज़ी नक्सनुल हुस्ना व ज़ियादा, वो लोग जिन्होंने नेकी की उनके लिए नेकी भी है और इससे ज्यादा भी है। फिर इसकी तफसीर में फरमाया कि जब जन्नत वाले जन्नत में और जहन्नुम वाले जहन्नुम में दाखिल हो जाएंगे तो मुनादी पुकारेगा, यानी पुकारने वाला, कॉलर, अनाउंसर, अनाउंस करने वाला, क्या कहेगा, जन्नत वालों अल्लाह के पास तुम्हारा एक वादा है, वो इसे पूरा करना चाहता है। ज़रा इमेजिन करें। और इब्ने माजा की रिवायत है ये 187। सब अपने आप को तसव्वुर में ले, जन्नत में, पर अल्लाह करे हमारे कान ये जुमले सुने, जन्नती को पुकारा जाएगा, अल्लाह का एक वादा है। जैसे दुनिया में अगर कोई कहे कि आपको मैंने कुछ देने का वादा किया था तो कान खड़े हो जाते हैं ना, जन्नती कहेंगे वो क्या वादा है, क्या अल्लाह ने हमारे नेक अमाल को वजनी नहीं किया, यानी हमारे स्केल्स हैवी ना कर दिए, क्या हमारे चेहरों को रोशन और ताबनाक नहीं किया, हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया और हमें जहन्नुम से निजात नहीं दी। यानी जन्नती कह रहे हैं अब और क्या रह गया पीछे, सब कुछ तो मिल गया, लेकिन उनको क्या पता कि अल्वहाब ने क्या छुपा के रखा है। यहाँ लिखे सबसे बड़ा हिबा मिलेगा उस दिन, तोहफा, बेस्ट गिफ्ट। आपने फरमाया फिर अल्लाह ताला अपने चेहरे से पर्दा हटा देगा, लोग इसका दीदार करेंगे। अल्लाह की कसम, अल्लाह के अतियात में से कोई भी चीज इनके नजदीक इसके दीदार से ज्यादा महबूब और इनकी निगाह को ठंडी करने वाली ना होगी। ये है वजूह हुई यौम इज़िन नादिरा इला रब्बिहा नासिरा। कुछ चेहरे उस दिन कितने तरोताज़ा होंगे, फ्रेश होंगे, खिले हुए होंगे, शाइनी, पॉलिश्ड। तुम तो क्या कुछ चेहरे पे लगा के चमक लाओ, कोई फेशियल तो कोई हाइड्रा फेशियल तो कोई दूसरा फेशियल। जन्नतियों का रब के चेहरे के दीदार से ही हुसन बढ़ता जाएगा। ये है सबसे बेहतरीन हदिया और हिबा, और याद रखिए ये है सबसे बड़ी नेमत। जन्नतियों को अल्लाह के दीदार के बाद फिर जन्नत का सबसे प्यारा मुकाम ये लगेगा कि एक बार अल्लाह को हम फिर देख लें। तो अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह हमें अपने चेहरे के दीदार से महरूम ना करना। आज से कहा करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज़्ज़त अन्नज़र इला वजहिक व शौक़ इला लिक़ाइक। अल्लाह मैं तेरे चेहरे की तरफ देखने की लज्जत का सवाल करती हूँ और तेरी मुलाकात का शौक मांगती हूँ। क्यों आप गुलूकार, अदाकारों और क्रिकेटर्स और दूसरे मसरूफ लोगों को देखने के शौक में मरते जीते हैं, उस अलवहाब को मिलने का शौक कीजिए जो इतना जनरस है। एवरी थिंग इज विद अस फ्रॉम द जनरोसिटी ऑफ अलवहाब। ये तो उसकी नेचर है, इट्स हिज नेचर टू गिव। तो जब उसको देखेंगे तो दिल का क्या हाल होगा। तो क्या पता चला कि अल्लाह के तोहफों में सबसे बड़ा तोहफा उसके चेहरे का दीदार। और सच्ची बात है, घर वाला ना मिले तो घर में दिल कहाँ लगता है, वो जन्नत भी क्या होगी जिसमें रब का दीदार ना हुआ। अल्लाह हमें उस जन्नत में ले जाना जहाँ हर वक्त हम तेरे पास रहें। और आपने फरमाया जब जन्नत मांगो तो जन्नत अलफिरदौस मांगो, क्योंकि उसकी छत रहमान का अर्श है। इसी तरह अल्लाह के अताया या अल्लाह के गिफ्ट्स में से एक और तोहफा, सिलसिला सहीहा की रिवायत 3342, अनस रावी हैं इसके, कहते हैं कि अकीदर, ये दूमतुल जुंदल का एक हुक्मरान था, इसने अल्लाह के नबी के लिए रेशम का एक जुब्बा भेजा। आपने इसे पहना तो लोगों को इस बात से ताज्जुब हुआ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुम इसकी वजह से ताज्जुब करते हो? इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, साद बिन मास के रुमाल जन्नत में इससे बेहतर हैं। फिर वो जुब्बा हजरत उमर को तोहफे में दे दिया। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, आप इसे ना पसंद करते हैं तो मैं इसे किस तरह पहन लूं, यानी आपको अच्छा नहीं लगा तो आपने मुझे दिया तो मैं क्यों पहनूं? आपने फरमाया, उमर, मैंने ये जुब्बा तुम्हारी तरफ इसलिए भेजा है ताकि इसे किसी को बेच कर इसके जरिए माल हासिल करें। और ये वाक्या मर्दों के रेशम पहनने से मना करने के वाक्य से पहले का है, यानी क्या पता चला कि मर्द के लिए रेशम मना है। तो यहाँ तोहफे की बात देखिए कि जन्नत में वो रुमाल जो साद बिन मास को मिलने, वो अल्लाह के हिबा होंगे, अल्लाह की तरफ से तोहफा होगा, हदिया होंगे। फिर इसी तरह हजरत याला बिन उमैया कहते हैं कि मैंने उमर बिन खत्ताब से पूछा, कुरान की आयत, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक्सुरू मिनस्सलाति इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुम अल्लज़ीना कफरू। असल में सलातुल कसर से मुतल्लिक है कि तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम नमाज कसर कर लो, और जब तुम्हें डर हो कि काफिर नुकसान पहुंचाएंगे, तो क्या ये सलाते कसर खौफ की हालत में खास है? ये निसाई की रिवायत है 1434। अब तो हम अमन में, मुराद ये कि अब तो कोई खौफ नहीं, तो हम सफर में कसर क्यों करते हैं? असल जुमला ये है। तो हजरत उमर ने कहा, मुझे भी इस पर बड़ी हैरत हुई थी, जिस पर तुझे हुई है तो जब मैंने अल्लाह के नबी से पूछा, यानी कि हम सफ़र में क्यों कसर पड़ेंगे। आज भी कुछ लोग कहते हैं, क्यों जी इतना वक्त होता है हम पढ़ लें फिर के, और आजकल तो सफ़र भी आसान है। तो आपने फरमाया, ये सदका है जो अल्लाह ने तुम पर किया है, तो तुम अल्लाह का सदका कबूल करो। यानी गिफ्ट है, सफ़र में कसर नमाज अल्लाह का हदिया है, इसको कबूल कीजिए। फिर इस तरह मुर्रा बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि अल्लाह के नबी के पास मेहमान आए, आपने अपनी बीवियों को खाना लाने के लिए किसी को भेजा, बीवियों के पास किसी को भेजा कि खाना लाइए, इनमें से किसी के पास कोई चीज़ ना थी। आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़दलिका व रहमतिका फ़इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंता। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे फजल और रहमत का सवाल करता हूँ, क्योंकि तू ही इसका मालिक है। आपको एक भुनी हुई बकरी तोहफे में दी गई, तो आपने फरमाया, ये अल्लाह के फजल से है और हम इसकी रहमत के मुंतजर हैं। सिलसिला तो सही है 2797। तो क्या पता चला कि घर में मेहमान के लिए कुछ नहीं था, अल-वहाब ने भुनी हुई बकरी भेज दी। आप भी तो मांग के देखिए अल-वहाब से। इसी तरह एक और रिवायत, वो भी सिलसिला सही है कि 1328 है, अनस रावी हैं, कहते हैं कि सारी उम्र नेकी करते रहो और अल्लाह की रहमत के अतियों यानी हिदायत के मुंतजिर रहो, क्योंकि अल्लाह अपनी रहमत के अतियात अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसे देता है। और अल्लाह से सवाल करो कि वो तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाल दे और तुम्हारी घबराहटों को अमन दे। आमीन। तो बोलिए, कितनी ज़रूरत है कि हमारे ऐब ढक जाएं। तो अल्लाह के तोहफों में से एक तोहफा कि वो आपके ऐबों को छुपा दे। और इसी तरह बशीर बिन साद से एक रिवायत ले लीजिए, उन्होंने अपने एक बेटे के ग़ुलाम तोहफे में दिया, फिर वो अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी को इस तोहफे पर गवाह बनाया। आपने कहा, क्या तुमने सारी औलाद को ऐसे तोहफे दिए हैं? उन्होंने कहा, नहीं। आपने फरमाया, फिर इसे भी वापस कर, यानी सबको दो। ये निसाई की रिवायत है 3707। इससे क्या पता चला कि अपने सब बच्चों को एक जैसा दिया करें। फिर हजरत इब्ने अब्बास से एक रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तोहफे में रजू करने वाला अपनी कैद चाटने वाले की तरह। निसाई 3727। ये जो मंगनियाँ टूटने और तलाकों की सूरत में और नाराजगियों की सूरत में चीज़ें वापस करते लेते ना, उस वक्त इस हदीस को याद रखिए। वो लड़के की अंगूठी भी दे दो, वो अम्मा को कड़े पहनाए थे वो भी दे दो। अल्लाह के नबी ने कितनी बुरी मिसाल दी है, अल्लाह ताला हमें तोहफे दे कर वापस ना लेने वाला बनाए। असल में तोहफे थोड़ी होते हैं, वो तो गले की भांस होते हैं, रस्में, और हमने तोहफों का नाम दिया हुआ। कौन लड़के की माँ को 5 तोले के कड़े पहनाए आज खुशी से? सिर्फ रस्मों में जकड़ के आज हमने अपने आप को असल मकसद से दूर कर लिया। इसी तरह अल-वहाब से मुतल्लिक हाजात, दुआएं और अज़कार बहुत से हैं, क्योंकि नाम ही है देने वाला, तो आप जान ही रहे हैं कि दुआओं के ही अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो याद रखिए कि हाजत छोटी हो या बड़ी, अनोखी हो या आम, यानी बड़ी यूनिक चीज़ आपने मांगनी है या बड़ी आम सी चीज़ है, हर हाजत अल्लाह से मांगिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जूती का तस्मा भी टूट जाए तो अल-वहाब से मांगो। तो आपके पास अगर शू लेसेस हैं, अगर पोनी है, रबड़ बैंड है, छोटे छोटे टॉप्स हैं आपके पास, आपकी स्काफ पिन है ना, वहां से शुरू करके लॉकरों में रखे हुए कीमती जेवरात तक को अल्लाह से ही जोड़ दीजिए। और अल्लाह के बंदों को भी फिर इसी की रग़बत दीजिए कि सिर्फ अल्लाह के सामने अपनी हाजात रखें। जो बंदों से मांगेगा अल्लाह उसको बंदों के बस डाल देगा। फिर आप देखिए, हज़रत ज़करिया ने जब मरियम अलैहिस्सलाम के बिन मौसम के फल देखे तो पूछा, ये कहाँ से आए हैं? तो क्या कहा था मरियम ने, हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क दे देता है। फिर आप देखिए, पीछे हम सुन चुके हैं, हज़रत ज़करिया ने जब बीवी मरियम के बिन मौसम के फल देखे तो दुआ मांग ली, कह मरियम को रोज़ी देने वाले मुझको अपने पास से पाकीज़ा रोज़ी दे, तू दुआओं का सुनने वाला। अल्लाह ने कहा ठीक है। और वो दुआ किधर है? सूरत मरियम की आयत 4 बिल्कुल शुरू में आती है, काल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकीया। उन्होंने अर्ज किया, परवरदिगार मेरी हड्डियां तक घुल गई हैं, सर बुढ़ापे से भड़क रहा है, ऐ परवरदिगार मैं कभी तुझसे दुआ मांग कर ना मुराद नहीं रहा। आज आप भी अगर मायूस है तो आज मांग लीजिए। ऐ लाल वहाब को पढ़ते हुए सुनते वक्त हम तुझसे दुआ करते, जिनको औलाद के मेवे और औलाद के फल से तूने अभी वक्ती तौर पे दूर रखा है उनको अता कर दे, और आंखों की ठंडक वाली नेकियों की सदका जारिया वाली औलाद दे। आप देखिए, अम्बिया में से जिसने भी औलाद मांगी, जैसे हजरत जकरिया के हम सुन रहे हैं, दीन के लिए मांगी। ये नहीं कहा मेरा वारस होगा, मेरी कोठियों का, मेरे मुरब्बों का, और वो जो 20-20 साल के लिए प्लॉट लेके रखे हैं वो किसको दूंगा, ना ना ना, वो जोड़ दीजिए, अल्लाह अपने दीन के काम ले ले मेरी औलादों से, ये दुआएं दिया करें। और इसी तरह से इब्राहिम की दुआ सूरह साफ़ात 100, रब्बी हबली मिनस सालेहीन, ऐ परवरदिगार मुझे एक बेटा अता फरमा जो सालेहों में से हो। 80-90 साल का बाबा हो गया इब्राहिम, उनको नहीं किसी कब्र वाले का रास्ता दिखा के चलो बाबा जी से बेटा ले आओ, नाउज़ बिल्ला। पीरां दित्ता उनको नहीं चाहिए था, रब दित्ता अल वहाब दित्ता चाहिए था, और रब ने फिर दिया। और सबसे बड़ी बात जो आप औलाद के लिए मांग सकते हैं अल वहाब से, लिखिए औलाद की इस्लाह के लिए अल वहाब से दुआएं करें। बिगड़ी औलादों वालों की औलादों की इस्लाह करे अल वहाब, हम मांगेंगे उससे। और हिदायत की दुआएं करते हुए यही दुआ मांगा करें, सूरह आले इमरान की आयत 8 में आता है ना कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। तो अपने बच्चों की हिदायत आप इस नज़र से मांगें, अपने लिए मांगें। और भी दुआएं पे इंशाल्लाह कुछ दे दूंगी अगर वक्त बचा, लेकिन यहाँ आप इस वक्त दुआ करिए कि औलादों की इस्लाह के लिए अलवहाब का दर खटखटाइए, हिदायत वाले बेहिदायते ना हो जाएं और बेहिदायते हिदायत पे आ जाएं, अलवहाब को पुकारिए। और इबादुर रहमान की दुआ अलफुरकान 74, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन व जालना लिल मुत्तकीना इमामा। जवान होते ही प्यूबर्टी के साथ ही बेटे बेटियों को ये दुआ सिखा दें, अभी से मांगे ताकि फिर अच्छी बीवी मिले, अच्छा शौहर मिले और बाद में अच्छे बच्चे मिले। और आंखों की ठंडक, आंखों की ठंडक क्या है, उलमा कहते हैं बच्चों को हम नेकियां करता देखें। आप देखिए आंखें गीली हो जाती है ना, पानी आता है आंखों में तो गीली चीज ठंडी होती है। किसी ने इसकी बड़ी प्यारी तौजीह की, उन्होंने कहा आंखों की ठंडक क्या है कि अल्लाह हम अपने बच्चों को ऐसी नेकियां करते देखें कि खुशी से हमारे आंसू निकल आए और उन आंसुओं और उस पानी की वजह से आंखें ठंडी हो जाएं। अल्लाह हमारे साथ भी ऐसे ही मामला करे। और सूरत शुरा की आयत 83 लीजिए, रब्बी हबली हुक्मा वल्हिकनी बिस्सालिहीन, इब्राहिम ने रूहानी रिस्क भी मांग लिया, अल्लाह हमें भी अता फरमा दे। फिर आले इमरान 8, हजरत जक्रिया की दुआ कितनी दफ़ा देखिए कुरान में आ रही है, रब्बी हबली मिल्ला दुन का जुर्रियतन तय्यिबतन इन्नक समीउद दुआ। ये है अकीदा, यकीन है कि अल्लाह आप हैं दुआओं को सुनने वाले, अपनी कुदरत से मुझे नेक औलाद दें। डॉक्टर जो मर्जी कहते रहे, अल्लाह मुझे नहीं डॉक्टरों के पास डालना, आप खुद ही ठीक कर दें। और अल वहाब से मांगी हुई एक दुआ जिसको आप और मैं कहते हैं दुआए नूर, फजर की सुन्नतों से लेकर फर्जों के बीच की ये दुआ है, आप ये याद कीजिए, बड़ी आसान दुआ है। एक दफा पढ़ लेंगे, मैं शुरू और आखिर बता देती हूँ, फिर बाकी आप खुद पढ़िएगा। और ये हमने हिस्नुल मुस्लिम में भी की थी अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़े नबी बुक में भी, ये सब में रिकॉर्डेड है, आप उसकी डिटेल वहाँ से लीजिए ताकि हम इस बुक में मज़ीद चीज़ें सीख लें। अल्लाहुम्मा जाल फी कल्बी नूरा व फी लिसानी नूरा से लेकर व हबली नूरन अला नूर, ये है असल में। ऐ अल्लाह मेरे दिल में नूर पैदा कर, मेरी जुबान में भी नूर, मेरे कानों में भी नूर, मेरी निगाह में भी नूर, मेरे ऊपर भी नूर, मेरे नीचे भी नूर, मेरे बाएं भी नूर, मेरे सामने भी नूर, मेरे पीछे भी नूर पैदा कर। और पैदा फरमा मेरे नफ्स में भी नूर, और मुझे बहुत नूर अता फरमा, और मुझे बहुत ज़्यादा नूर अता कर, और मेरे लिए हर तरफ नूर कर दे, और मेरे जिस्म को नूर बना दे, मेरे गोश्त में नूर, मेरे खून में नूर, मेरे बालों में नूर, मेरी जिल्द में नूर, मेरे लिए नूर, मेरी कब्र में नूर, मेरी हड्डियों में नूर, मेरे गुदे में नूर, और ज्यादा कर दे मेरा नूर अल्लाह, ज्यादा कर दे मेरा नूर अल्लाह, ज्यादा कर दे मेरा नूर, और मुझे नूर पे नूर अता फरमा नूरन अला नूर। अल्लाह के दीन और कुरान के इस नूरुल कुरान को भी याद करके मांगी, अल्लाह इस कुरान के नूर को गली गली घर घर में पहुंचा दे। तो जब ये दुआएं पढ़ते हैं ना दिल ठंडा हो जाता है। तो लफ्ज़ अल वहाब के बारे में जितना कुछ अभी तक सुना उससे अपने लिए अलमौज़ातिल हसना लीजिए। पहली बात नेमतों की कदर करें, अल्लाह की नेमतें अल्लाह ने अता की हैं उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए ना कदरे, लोगों से एक एक करके अल्लाह ताला ले लेता है नेमतें। फिर आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और उसको इन निजाइल फिल अर्द खलीफा का नाम दिया, ये भी अल्लाह का इनाम है कि इंसान को उसने खलीफा का टाइटल अता फरमाया। तो दुनिया में अल्लाह के निज़ाम को राइज कीजिए। फिर इसी तरह कायनात इंसान की खिदमत में मसरूफ है, ये अलवहाब का इनाम नहीं है। सूरज सुबह उठते तो किसके लिए, चांद सितारे, कायनात के जर्रे जर्रे को देखकर बताइए कि ये किसकी खिदमतों में मसरूफ हैं। अलवहाब ने इन सब को आपकी चाकरी में लगा दिया। अगर आपने मैंने इन नेमतों की कदर ना की तो ये हो सकता है हमसे छीन जाए और फिर हमें इन चीज़ों से फायदा ही ना हो सके, तो ये अल्लाह का तोहफा है। फिर आप देखिए कि हमारा दिमाग, हमारा कान, हमारी आंख, जुबान, हत्ता के पूरे का पूरा जिस्म अलवहाब का इनाम है। आपको पता है हमारे जिस्म की एक एक चीज का तो इस वक्त मौका नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गौर कीजिए हाथों पे। अपने हाथ देखिए, छोटे छोटे हाथ है ना, आम से काम करने के काबिल अल्लाह ने बनाया। चाय की प्याली पकड़ना, चमची हिलाना, अखबार को पढ़ना, किताब को पकड़ना, आप देखिए कि हाथ हमारी हर एक्टिविटी में काम करता है। अपनी जरूरियात से फारिग होना, और क्या इसकी साख्त है, क्या इसमें हड्डियां हैं, इसमें मसल्स हैं, इसकी रगें हैं, ब्लड वेन्स हैं। और आप देखिए कि किसी वक्त हाथ से मजबूती से पकड़ना पड़ता है, कभी नरमी से थापना पड़ता है। मसल आप देखिए कि मुट्ठी की शक्ल में जब इसको बनाते हैं तो इसकी और शेप बनती है। हाथ मुट्ठी वाला हो तो थप्पड़ नहीं लगा सकते। किसी चीज पर इसकी जरब आप लगाएं तो कम से कम कहते हैं कि 45 किलोग्राम वजनी होती है। और हमारा हाथ, फिर अंगूठा देखिए, शहादत की उंगली देखिए, एक कागज की शीट को पकड़ें तो पकड़ लें, 1 मिलीलीटर का 1/10 हिस्सा मोटी होती है। आप अपने हाथ से इतनी बारीक चीज पकड़ते हैं, और कभी किलो किलो क्या बोरियां उठाते हैं बेचारे मजदूर, तोड़े उठाते हैं, कहीं जरा सी हिस्सा है, कहीं बिल्कुल नहीं। हमें एक सेकंड के लिए सोचना नहीं पड़ता अपने हाथ से काम करवाते हुए, ये करो, किसी को मुक्का मारना हो इसको मुक्का पकड़ कर बना कर मारिए, कौन चाहता है, किसको पता है? पानी की बाल्टी पकड़ते हैं, हाथ में उतनी ताकत आ जाती है। आप तो नहीं कहते कि हाय 40 किलोग्राम की बाल्टी उठाने लगाऊं, और वो तो मैंने 0.5 ग्राम का कागज पकड़ा था। खुद बखुद ऑटोमेशन, क्या पीछे से अल्लाह ने दिमाग के साथ निजाम को जोड़ा हुआ है इतने खूबसूरत तरीके से। फिर अंगूठे को देखिए, ये आपके थंब के हैं, ये फिंगरप्रिंट्स के हैं, अल्लाह ने आपकी पोर पोर का जिक्र सूरत कयामत में कर दिया कुरान में। फिर अंगूठा छोटा, एक उंगली बड़ी, फिर सबकी अंदर बड़ी, ये किसने बनाया? अल्वहाब ने बनाया। फिर आप देखिए उंगलियों के सिरों पे नाखून, नाखूनों के बगैर अगर उंगलियां होती तो मुड़ी रहती, जैसे कभी आप वेलवेट पहने ना या बड़ा सिल्की सा कपड़ा तो किनारे मुड़े ही रहते हैं। फिर कई दफा लोग उसको मोटा करते हैं, कोई उसमें लेस लगाते हैं, दुपट्टे के किनारे मुड़े रहते हैं, उसको खड़ा करते हैं, ये नाखूनों ने आपकी उंगलियां सीधी की हुई है। हम एक सुई ना उठा सकते अगर नाखून ना होते। कैसे अल्लाह ने उंगलियों के सिरों पर खुरदरी सी नाखूनों की एक तह बिछा दी कि जरा नीचे से मट्टी भी उठानी पड़े, कुछ धागे भी उठाने पड़े तो उठा ले। फिर मजे की बात है कि हाथ थकता ही नहीं है। अमूमन हाथ जो होता है ना, आंख के साथ हम आहंग होता है। आंख जो देखती है, इशारा करती है, हाथ वही काम करता है। आंख को छूना हो दिमाग तक हुक्म, कहाँ क्या ये अलवाहाब ने, यानी आप सिर्फ चंद चीजों में इसको मत देखिए, पूरा मैकेनिकल वर्क है अल्लाह ने आपके मेरे जिस्म में रखा हुआ। फिर दिल की धड़कन देखिए, जुबान को देखिए, स्किन को देखिए, हाथ लगाए अपने चेहरे पे, क्या खूबसूरत तोहफे देकर अल्लाह बच्चे को दुनिया में भेजता है। फिर आप में कहाँ अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें, कहाँ हमने लंग्स देखे, कहाँ अपना नर्वस सिस्टम देखा, उसको देखकर तो सांस रुकती है। तो क्या पता चला, हमारी सारी सलाहियतें अल्वहाब का बेहतरीन इनाम है। फिर आप देखिए जोड़े, अल्लाह ने हमें एक शौहर बीवी का जोड़ा बना दिया, हम जिन्स जोड़े, अलवहाब का इनाम नहीं है। अगर घोड़े की शादी इंसान से हो रही होती और इंसान मर्द के मुकाबले में बंदरिया बैठी होती, ये तो अब इंसान जानवर बन गया है ना। वो सेम सेक्स की शादियां या जानवरों से शादियां और इसी तरह बंदरों से शादियां कर रहा है, वरना अल्लाह ने तो बहुत उसको अच्छा दिया, तो ये अल्लाह की निशानी है। खानदान किसका इनाम है? रब का इनाम है। हर तरह का रिस्क किसका इनाम है? अलवहाब का। तो फिर हर छोटी बड़ी जरूरत हाजत अलवहाब से मांगिए, और साथ ही साथ अल्लाह से ये दुआएं किया करें कि बस लिख ली फी जरूरियती, अल्लाह इस दुनिया से औलादों के दुख और गम लेकर ना जाए। फिर आप देखिए पीछे हम सुन चुके हैं, हजरत जकरिया ने बड़ी प्यारी दुआ की थी याह्या के लिए, अल्लाह जो बच्चा मुझे देगा ना तो वो लोगों का पसंदीदा बंदा भी हो। और फिर आप देखेंगे कि जितना ज्यादा अल्लाह के इस नाम के साथ ताल्लुक जुड़ता जाएगा, अमल भी बढ़ेगा। तो काम करना क्या है? पहली बात है, किसी से भी कुछ चाहिए, बच्चों को बचपन में सिखाइए, मुझसे भी चाहिए तो कहें अल्लाह ताला आप मेरी मामा के दिल में डाल दें, मुझे ये चीज़ ले दें, बाबा के दिल में डाल दें। और फिर इसी तरह बहुत छोटी उम्र में बहुत बातें नहीं बतानी चाहिए, मासूम रखिए बच्चों को, वरना वो भी बड़े 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 सवाल करने लग जाते हैं। बस भोलपने में कह दे अल्लाह ने दिया, जुमले ही बदले, मामा ने दिया, अल्लाह ने कहा मामा को, बेटे को ये दे दो, तो इस तरह करेंगे। फिर इसी तरह आप देखिए कि अलवहाब के दिए हुए किसी तोहफे को हकीर ना जानिए। एक और करने का काम कीजिए कि अपनी नेमतों को तसव्वुर करें, क्या आप इसके मुस्तहिक थे या ये अलवहाब का करम है। फिर इसी तरह एक काम कीजिए कि जन्नत की लाजवाल नेमतें पाने के लिए अलवहाब को पुकारें। फिर इसी तरह आप देखिए कि जो हकदार है, आपके खानदान के मुस्तहकीन है, कोई यतीम बच्चे, को बेवा औरत है, उनकी जरूरियात तोहफा करके उनको दें ताकि उनकी इज्जत नफ्स पामाल ना हो। फिर इस तरह रिश्तेदारों और दोस्तों में तोहफों के तबादले करें, इससे मोहब्बत बढ़ती है। देखिए आम लोगों को तो चलिए आप सदकात से देते हैं, खैरात से देते हैं, आमतौर पे तोहफे दिया करें, तहादु तहाबु, हिबा से हदीये से हुब बढ़ती है। फिर इसी तरह किसी गरीब रिश्तेदार का कोई छोटा मोटा तोहफा आपको मिल जाए किसी मौके पे, वो बेचारे को सस्ती सी चीज़ ले दें तो उसको हकीर ना जाने, उसकी हौसला अफजाई करें। फिर इसी तरह तोहफा देने वाले की अगर हैसियत अच्छी ना हो, कम हो, तो अच्छी बातों के तोहफे आम कर दें, मतलब आपके पास कुछ नहीं है, अच्छी बात कर दीजिए। कौलुम मारूफ उन खैरो मिन सदका, अल्लाह कहते उस सदका जिसके बाद ताने दो उससे तो बेहतर अच्छी बात कर दो। और फिर अलवहाब के तहाइफ, जो आपके पास सर के बालों से लेके पाँव की उंगली और कायनात में फैले हुए, उसको अलवहाब के रस्ते में इस्तेमाल करें। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जिस किसी की तहाइफ देते हो ये दिलचस्पी हो ना कि वो इनके जरिए से जल्द या बदेर पहचाना जाए, चाहे तारीफ कोई करे उसकी, मोहब्बत पाए, कोई इल्ज़ाम लगा उसे निजात मिले, सराहे, तो समझ लीजिए कि उसने अल्लाह के लिए नहीं दिया। यानी जब भी किसी तोहफे के बाद मांगे, वला तमनुन तस्तकसिर, मेरा अहले सूरत मुद्दसिर की आयत है कि ज्यादा लेने की नीयत से ना दिया करो, बदले में शुक्रिया भी ना मांगिए। ऐसा शख्स सखी नहीं है। सिर्फ उसके लिए इमाम गजाली का कौल था कि वो कहते हैं कि अल्लाह के लिए दो लोगे तो फिर बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। और फिर इसी तरह से आप देखिए कि जब आप अल्लाह ताला के इस नाम पे इतना गौर व फिक्र कर जाते हैं तो यकीनन फिर दिल में ख्याल आता है कि फिर हमें भी तो अपने रब के साथ ताल्लुक जोड़ना है ना, तो इन सारी बातों को सुनने के बाद मायूसी निकाल दें। बूढ़े जकरिया को बुढ़ापे में औलाद दी, कुंवारी मरियम को बेटा दिया, तो अपनी जिंदगी से मायूसी निकाल दें और अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों की उम्मीद रखें, वो आपके साथ बेहतरीन मामला करेगा। और इसी तरह एक छोटी सी चीज़ भी जाते जाते सुन लीजिए कि हमने अल्लाह ताला का नाम अर-रज़्ज़ाक जाना था। अर-रज़्ज़ाक लफ्ज़ के इस बात फिलहाल वहाब में फ़र्क क्या है, सवाल समझ आ गया? एक फ़र्क आपको दिया वाहिब और वहाब का, वो तो आप समझ चुके हैं कि वाहिब कभी कभार एक आध बार देने वाला, वहाब मुस्तकिल पैदा होने से पहले से माँ के पेट में देता था और आज तक दे रहा, और अकबरा कब्र भी वही देगा, हशर भी वही देगा, क्यामत के दिन जब तक जन्नत में पहुंच कर रब का दीदार नहीं हो जाएगा बात नहीं बनेगी, उस वक्त तक तो ये बात है। लेकिन सवाल ये है कि रज़ाक और अलवहाब में फ़र्क क्या है, क्योंकि ये फ़र्क हमें जानने चाहिए और इससे फ़ायदा भी होगा। तो याद रखिए कि वहाब तोहफे से है, गिफ्ट है, अर-रज़्ज़ाक क्या है, जो मामूल की ज़रूरतों को तयशुदा अमर के साथ पूरा करता है, यानी डे टू डे लाइफ की ज़रूरतें, इंसान की जिद्दोजहद है, उसकी कोशिश है, उसका मुआवजा अल्लाह देता है। चूँकि अल्लाह अल-खालिक है तो खालिक का ज़िम्मा है कि वह रिस्क दे, यानी आप कह लीजिए कि जब अल्लाह रॉज़िक है ना तो बस रूटीन लाइफ की चीज़ें देता है, चाँद सूरज ज़मीन चाँद सितारे, ये खाना पानी ये तो देना ही था। ये ऐसे जैसे आप अपने घर में रहने वालों को रोज़ खिला रहे हैं पिला रहे हैं, मासियाँ हैं, नौकर हैं, ड्राइवर हैं, रोज़ खाना दे रहे हैं, ठीक है, ये है रज़ाकियत। लेकिन वहाबियत क्या है, कभी कभी बोनस दे दो, कभी गिफ्ट दे दो, आप अपने बच्चे के लिए तोहफा ले आते हैं। अलवहाब वो ज़ात जो बग़ैर मेहनत और जिद्दोजहद और कोशिश और बाज़ुकात बग़ैर ख्वाहिश के अपने बंदों को नेमते अता करता है। एक और मिसाल लीजिए कि एक इदारे का सरबरा अपने मुलाजमों को तनख्वाह हमेशा ही देता है, ये है रज़ाकियत का एक माना समझना, लेकिन कभी बोनस दे देता है, कभी मुलाजमों की ख्वाहिश के बगैर किसी शानदार होटल में ले जाता है और खाना खिलाऊं, कभी देख पकवा कर चावल बटा दिए, ये जो बात कीजिए ना ये अलवहाब है, ये हिबा है, ये गिफ्ट है। यानी बंदा डिजर्व नहीं कर रहा होता, बंदा एक्सपेक्ट नहीं करता, और अपने लिए भी नोट कीजिए, तोहफा है ही वो जो एक्सपेक्ट ना करे, सालगिरह वाले दिन पहले उम्मीद लग गई कि अब केक आने और मुबारकें आनी, वो तोहफा नहीं है, वो रस्म है। बात समझें, गिफ्ट किसको कहते हैं जिसमें उम्मीद नहीं होती, सडन अचानक, लेकिन बाकी चीज़ें तो रस्म और रिवाज होते हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको मुझे जो ये सब कुछ अता किया, अगर मैं आपको एक गो थ्रू में कर दूँ कि अल-वहाब की तरफ से आपको मुझे कितने तोहफे मिले रूहानी और मादी, सबसे पहला हदिया और हिबा जो अल-वहाब ने दिया, वो अम्बिया को भेजा, किताबें भेजी, पैगम्बरों का आना इंसानों के लिए सबसे पहला तोहफा था। फिर दूसरी चीज़ हिदायत की तरफ जाने वाले रास्ते दिखा देना, मस्जिद मदरसा उस्ताद खैरख्वाह, ये अल-वहाब के दूसरे तोहफे हैं। फिर हज और उम्रे की ख्वाहिश करने वालों के सबाब बन जाना, अल्लाह ताला ऐसे इंतज़ाम करता है अक्ल दंग रह जाती है, ये अल-वहाब का तोहफा है कि उसने आपके लिए हज उम्रे का सबब बनाया। फिर चौथा तोहफा अल-वहाब का आपको क्या, इबादात में खुशू हलावत ईमान की मिठास, कुरान सुनते हुए रो पड़ना, तिलावत करते हुए दिल में खशियत है, जिस्म की खाल कभी नरम होती है, तख्शय जुलूदहुम, یہ الوہاب کے روحانی تحفے ہوتے ہیں، اس پہ شکر کیا کرے اگر دل ایسا ہے. پھر پانچویں چیز الوہاب آپ کو دیتا ہے، دعاؤں کی توفیق دے دیتا ہے، حضور یہ قلب حاصل ہو جاتی ہے. پھر چھٹی چیز صلاحیتیں، تحفے، آپ کی اسکلز. آپ میں سے کسی کو اچھا بولنا آتا، کسی کو لکھنا آتا، کسی کو سینا آتا، پھرونا آتا، کھانا آتا، پکانا آتا، کسی کی آواز اچھی، کسی کی لکھائی اچھی، کوئی نثر اچھی پڑھتا، کوئی نعت اچھی پڑھتا، کوئی مصور، کوئی کوئی بھی ہے، یہ اللہ کے تحفے ہیں. تو کبھی آپ نے سوچا آپ کی کیا صلاحیت ہے؟ تو دیجئے اس کو الوہاب کے نام پہ استعمال کیجئے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب الوہاب آپ کو تحفے دیتا ہے نا، تو پھر وہ چاہتا ہے آپ شکر بھی کریں، کیونکہ ہر نعمت کا سوال ہوگا. اور پھر سب سے بڑا تحفہ الوہاب نے دیا، بن مانگے ماں باپ دے دیے، پیدا ہوتے ہی اگر سڑک پہ تو کیا ہوتا، پھر بڑے ہوئے تو اولاد دے دی، یہ سارے اس کے تحفے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیے محبتیں ڈالی، جذبات دیے، ایموشن دیے. شوہر بیوی کے اندر جذبات نہ ہو تو اولاد کہاں سے آئے؟ اللہ نے جذبات کی بانڈ لگا کر اولاد کو دنیا میں بھیجنے کا ذریعہ بنایا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے لیے ان ساری چیزوں کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا، غور و فکر کرنا آسان کر دے. اور اللہ اولادوں کے جو خوبصورت تحفے تو نے دیے، ہم اس کو تیرے راستوں میں خاص کریں، ان کو تیری پسند کے بندے بنائیں، قیامت کے دن ہم اپنی اولادوں کی وجہ سے اعلیٰ جنتوں میں پہنچیں. ہم سے زیادہ آگے کر ہمارے چھوٹوں کو، ہماری نسلوں کو، تاکہ ہم ان کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکیں. اور قو انفسکم واہلیکم نارا پہ عمل کرتے کرتے اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں، خاندانوں کو اچھی تربیت کے تحفے دیجئے. اور ماں باپ کے لیے ایک تحفہ دیجئے کہ رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. پھر اسی میں اپنے رشتہ دار، چچا، پھپھی، ماموں، خالہ، ان رشتوں کی قدر کیجئے. یہ تحفے ہیں جن کا ہے ہی کوئی نہیں، کبھی پوچھئے انہوں نے ان رشتوں کی مٹھاس کو کبھی چکھا ہی نہیں ہوگا. تو صلہ رحمی کیجئے. آج اس نام کو سننے کے بعد کچھ نہ کچھ نیت کیجئے، کچھ ہبا کیجئے، کوئی اپنی چیز اللہ کے راستے میں دے دی. یہ گھر میں نے اللہ کو دیا، آپ کو اللہ نے کوئی چیز دی ہے، کہہ دیجئے میں نے زندگی میں دی. دیکھے مرنے کے بعد ورثہ ہوتا ہے، ہبا کیجئے، دنیا میں دیجئے، اللہ بڑی قدر کرتا ہے. اچھے دوست ہیں تو ان کی قدر کیجئے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو الوہاب نے جو تحفے دیے اس کا بھی ذکر کر دوں تو وہ بھی بہت لمبی لسٹ بنے گی. اللہ کے نبی کو الوہاب نے کیا دیا؟ سید المرسلین بنایا، سید الانبیاء بنا دیا، ساری امتوں میں سے آپ کی امت کو چن لیا، آپ کو حوض کوثر عطا کیا، پھر آپ کی امت کو جنت کی خوشخبریاں دی، قیامت کے دن آپ کی شفاعت اللہ نے رکھی، یہ بھی تحفہ ہے. پھر اسی طرح سے قرآن کا نزول آپ کی طرف کیا گیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ کے مشن کی تکمیل دی، ہزار راتوں سے بہتر رات دی، بہت لمبی لسٹ ہے. گفٹس تو ویسے ہی بڑے اچھے لگتے ہیں، اور جتنا زیادہ گفٹس کو پتہ ہو کہ کدھر سے آیا، ذرا سوچیے آپ، یہ پھول، یہ پتے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ کس کے بنائے ہوئے تحفے ہیں؟ کتنی بورنگ سی دنیا بنا دیتا بلیک اینڈ وائٹ، یہ رنگ کہاں سے آئے؟ یہ آپ کو پرپل کے اتنے شیڈ، گرین کے اتنے شیڈ کہاں سے دکھ رہے ہیں؟ یہ سرخ پھول پتے کبھی آپ نے دیکھے؟ فطرت، کائنات، اس پہ غور کرتے جائیے. یہ نیلا پانی، یہ پہاڑ، آپ دیکھیے کہ یہ مومنٹس، ایکسپیرینسز، یہ سینریز، یہ سب الوہاب کے تحفے ہیں. آپ گھر سے باہر نکلیں، گھر میں رہیں، آپ چائنا چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، آپ پاکستان چلے جائیں، انڈیا چلے جائیں، الوہاب کے تحفے بکھرے ہوئے ہیں. یہ پوری کائنات الوہاب کا تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی قدر کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.